सत्ता मात्र स्फूर्ति चेतना ज्ञान सब सब बलों का बल वही है, सब ज्ञानों का ज्ञान वही है, सब सुखों का उद्गम स्थान वही है। श्री कृष्ण का अवतार भी उसी की सत्ता से उसी में हो, रामा अवतार, राम श्री राम की आकृति, कृष्ण की आकृति, माह गायत्री की साकार आकृति हमारे पास नहीं, साकार रूप में उनकी मूर्ति है लेकिन गायत्री माँ नहीं, लेकिन गायत्री माँ जिससे माँ है, कृष्ण जिससे कृष्ण है, राम जिससे राम है, आप जिससे आप है, मैं जिससे मैं है, वो तो अभी भी सब में है, सदा है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे, गुरुवाणी ने कहा। वो साहेब सद सदा हजूर है, हाजरा हजूर जागंदी जोत, आद सत जुगात सत है भी सत, नानक उसे भी सत, वो ऐसा सत स्वरूप। एक होता है सत्य, दूसरा होता है सत, जैसे दो और दो चार, ये सत्य है, ये मंडप है, ये कपड़े का मंडप है, आप बैठे हैं, ये सब सत्य है, सत नहीं। सत वो होता है जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, कभी बदले नहीं। जो सत होता है वो चेतन भी होता है और ज्ञान स्वरूप भी होता है। सत्य ये सामाजिक व्यवस्था है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ कि भाई ये मोहन भाई है, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि ये सूती टुवाल है, सत्य है। लेकिन सत वो होता है जो आद में सत हो, पहले सत अभी भी है और हम सब न रहे, सृष्टि न रहे तभी भी रहे, उसको बोलते सत। तो जो सत है वो चेतन भी है, और जो सत है चेतन है वो ज्ञान स्वरूप भी है, और जो ज्ञान स्वरूप है वो आनंद स्वरूप भी है, और जो सत है वो सदा है, जो सदा है वो सर्वत्र है, जो ज्ञान स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। तो सदा है, सर्वत्र है, तो यहीं भी है। अगर यहां यहां छोड़कर, मेरे को छोड़कर है तो सर्वत्र नहीं हुआ, अभी नहीं बाद में होगा तभी सदा न हुआ। तो सत सदा है, सर्वत्र है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो जो सर्वत्र है सदा है वो अभी भी है, जो सर्वत्र है वो यहां भी है, और जो ज्ञान स्वरूप है तो आनंद स्वरूप है। तो बाबा उसका कैसे अनुभव हो, कैसे उसका लाभ उठाए, वही पुरुष है सच्चिदानंद, असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। ये गुण सब माया में, उस परमेश्वर में कोई गुण नहीं, गुणातीत। त्रैगुणा विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना। जो निस्त्रय गुण हो गया अर्जुन तो फिर कर्म बंधन नहीं लगेगा, सारे शोक दूर होते। उस पुरुष को अपने शुद्ध मय को जान, तो जो ज्ञान है वही आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान है वही चैतन्य स्वरूप है, और जो ज्ञान है वही सत्य है। हाँ, उस ज्ञान का फायदा लेने के साधन छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई बुद्धू है, कोई बुद्धिवान है, कोई बुद्धिजीवी है, लेकिन इनको जो ज्ञान मिलता है वो शरीर टिकाने का, पेट भरने का फायदा लेकर मर जाते हैं। लेकिन जो गुरुमुख है, जो साधन भजन करके उस सत को पाना चाहते, वे बुद्धि योगी बन जाते, उनकी बुद्धि को उस पुरुष में विश्रांति मिल जाती, योग हो जाता है, मेल हो जाता है। तो महाराज हमारा कैसे हो, भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हैं मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि तो सबके पास, मच्छर के पास भी बुद्धि है, ख खटमल के पास भी बुद्धि है, है कि नहीं है? खटमल के पास बुद्धि है कि नहीं है? है। मच्छर के पास बुद्धि है, जरा सा मच्छर उसकी खोपड़ी कितनी छोटी, उसमें भी बुद्धि, बुद्धि तो ज्ञान की चेतना भी है उसमें। सत तो वो है जो पहले था, अभी है, बाद में रहे। असत उसको बोलते जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहे। मिथ्या उसको बोलते कि पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में दिखता है। ये गुलाब का फूल दिखता है लेकिन सत नहीं है। गुलाब है ये सत्य है लेकिन ये सत नहीं है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी नहीं के तरफ जा रहा है। तो जगत को बोलते मिथ्या, जगत मिथ्या, शरीर मिथ्या। तो सुख भी आए संसारी तो समझो मिथ्या है, पहले नहीं था, अभी आया है, कभी चला जाएगा। दुख भी आए तो मिथ्या। तो इन सब को मिथ्या की मोहर मारते जाओ तो इंद्रियों को दौड़ धूप या मन का चिंतन बुद्धि की दौड़ धूप कम हो जाएगी, तो आपको विश्रांति मिलेगी। जयराम जी की। इंद्रियों को और शरीर को विश्रांति मिलती तो काम करने योग्य होते। बोलते बोलते थक गए, चुप हो गए, फिर बोलने का सामर्थ्य आया। चलते चलते थक गए, चुप हो गए, तो फिर चलने का सामर्थ्य आया। नाचते नाचते थक गए, फिर जरा बैठे, पानी पिए, थोड़ा आराम किया, फिर नाचे। सुनते सुनते उब गए, थक गए, चले गए, फिर एक घंटे के बाद आए तो फिर सुनने का सामर्थ्य आया। तो जैसे बीच में आराम पाते हैं विश्रांति से, फिर शक्ति आती। तो ये इंद्रियां मिथ्या, शरीर मिथ्या, लेकिन पुरुष सत्य है। उस सत्य में विश्रांति पाते हैं तो इस मिथ्या में भी थोड़ा बल आ जाता है। लेकिन मिथ्या साधन कितना बल रखे। तो आपका आत्मा सत स्वरूप है और परमात्मा सत स्वरूप है। आद सत्य ऐसा नहीं कहा, आद सत्य, आद सत्य, जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तो जो व्यापक है तो उस परमेश्वर को ब्रह्म बोलते हैं, अंतःकरण में है तो उसको जीवात्मा बोल देते हैं, है वही का वही। और अवतार के अंतःकरण में है तो उसको भगवान बोलते हैं। जैसे घड़े के अंदर है तो घटाकाश बोलते हैं, मठ के अंदर है तो उसको मठाकाश बोलते हैं, मेघ के अंदर है तो उसको मेघाकाश बोलते हैं, और व्यापक है तो उसे महाकाश बोलते हैं, है तो आकाश। साधन भेद से, उपाधि भेद से भिन्न भिन्न उसके नाम। तो ये नाम पड़े माया के कारण, उपाधि के कारण, असत्य के कारण उसको सत्य बोलते, दुख का निमित्त देखकर उसको बोलते सुख स्वरूप है। लेकिन दुख की सत्यता न जान मानो तो वो सुख स्वरूप है ये बोलना भी नहीं है, वो पुरुष अपने आप में पूर्ण है। उस पूर्ण पुरुष का अनुभव अथवा उसकी कृपा या बुद्धि योग कैसे पाए, संगति मिलना चाहिए। धड़ो बुद्धि योग कैसे पाए कि उसको प्रीति पूर्वक भजो। तो प्रीति पूर्वक महाराज कैसे बजे, हम तो मौन थाल रखते हैं, तू गिरधर गोपाल, तू सचे पाशा सदगुरु महाराज, हम तो करते हैं महाराज, और क्या करे प्रीति पूर्वक। प्रीति पूर्वक भजने का ये निशानी है कि आप उसका भजन सुमरण करते हो तो उससे क्या चाहते हो। महाराज हम ये चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा काम धंधा अच्छा चले, घर में संप रहे, समाज में इज्जत आबरू रहे, हम वो चाहते हैं भगवान से। भगवान से अब आप इज्जत आबरू चाहते हैं, शरीर स्वस्थ चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, तो भगवान से जो चीज चाहते हैं आप, तो आपकी चाहने की चीज बड़ी हो गई और भगवान छोटे हो गए। क्योंकि वो नहीं चाहिए, ये चीजें चाहिए, तो भगवान का आप उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। भगवान में आप मिलना नहीं चाहते, जो प्रीति करता है वो उससे अलग होना नहीं चाहता है। जय राम जी की। भगवान से प्रीति करते तो जब फालतू चीजें मांगते हैं तो भगवान से प्रीति है चीजों के कारण, तो चीजें ज्यादा प्रीतिपूर्वक हो गई। नहीं, भगवान से प्रीति करे, चीजें मांगते मांगते बुद्धि जब विकसित होती है तो फिर प्रेमास्पद से मांगा नहीं जाता, प्रेमास्पद को दिया जाता है। जहां अहंकार होता है वहां स्वार्थ और लेना होता है, और जहां प्रेम होता है वहां निस्वार्थता और देना होता है। भला शिव जी को क्या जरूरत थी एक लोटा पानी की? तीन बिली पत्र से शिव जी का क्या लाभ हो जाएगा? लेकिन आप प्रेम करना सीखे, इसीलिए नमः शिवाय महेश कराय शंभवाय समयो भवाय नमः शिवाय आहो शंभो। अब तुम्हारा शिव जी को तो कोई जरूरत नहीं। सूर्य को एक लोटा पानी देते, सूर्य तो करोड़ों गैलन उठा के बरसवा रहे, फिर भी तुम्हारा एक लोटा पानी से क्या उनको लाभ हो जाएगा? उनको तो लाभ नहीं होगा, लेकिन सूर्य के उपासक तो जहाँ प्रेम है वहाँ कुछ न कुछ दिया बिना नहीं रह जाता है। आप जानते हैं कि भगवान के पास कोई कमी नहीं है, जिसको प्रेम करते हैं उसको कोई कमी नहीं है, फिर भी आपसे दिया नहीं जाता। तो आप वस्तुएं देते हो, मन देते हो, बुद्धि देते हो, जितना प्रेम करते जाते हैं, आरंभिक प्रेम होगा तो वस्तुएं दोगे, फिर प्रेम बढ़ेगा तो मन उसमें लगेगा, फिर प्रेम बढ़ेगा तो बुद्धि उसमें लगेगी। तो आप तो ये मिथ्या चीजें देते हो, लेकिन वो प्रेमास्पद भी दिए बिना नहीं रहता है, तो वो अपना आपा दे डालता है। कीड़ी की और गरुड़ की चाल में तो अंतर है, लेकिन कीड़ी गरुड़ से प्रीति करना चाहे और गरुड़ के लिए चल पड़े, चलते 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 चलती जाए, आराम करके चलती जाए, तो कीड़ी की अपनी चाल से वो चलेगी, कितना चलेगी बेचारी? उसकी पूरी जिंदगी हो जाए तो शायद 1-2 किलोमीटर चल लेगी। इन गरुड़ को पता चले कि कीड़ी मेरे लिए चल रही है, तो गरुड़ अपनी चाल से चलेगा, सामवेद की ऋचाओं का गान करता हुआ धड़ाक मिलेगा। कंगाल और बड़ा सम्राट, कंगाल सम्राट को चाहे, सम्राट को दे तो क्या देगा? बाजरे की रोटी खा लो साहब, ये फाफड़े खा लो, एक कप चाय पी लो, खटिया पे बैठो, मेरे चौपड़े में आओ। तो कंगाल स्वागत करेगा सम्राट का तो अपनी हैसियत के अनुसार करेगा, लेकिन सम्राट जब कंगाल का स्वागत करने लगेगा तो वो अपनी महिमा के अनुसार करेगा। ऐसे अंतःकरण अवच्छिन्न अपने को मैं मानने वाला क्या देगा? एक लोटा पानी दे देगा, थोड़े बिली पत्र दे देगा, थोड़ी देर ताली ठोक देगा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जीव क्या करेगा बेचारा? हरि ओम करो तो। फिर करो हरि, भीख मांगना चाहू क्या करेगा बेचारा? कि बिचारी एक फलांग चलेगी तो क्या करोगे? हरिओम करते करते 15 मिनट करो, फिर देखो क्या हाल होता है। बोले बाबा जी अब चुप कराए तो अच्छा है। नानक बोले सहज स्वभाव। अरकी पौड़ी पे बहुत लोग हारमोनियम करके दाढ़ी बाड़ी बना के ये वो बना के गाते बजाते, ऐसे कथाकार तो बेचारे भले मौज करते लेकिन उसके साथ एक होके फिर जो बोलो वाह। जयराम जी की, आप क्या दोगे, कितनी देर दोगे, चलो देखो कितनी देर देते हो, अपना इंद्रियां मन अपनी वाणी देंगे ना भाई, हरि ओम करके अपनी वाणी अर्पण कर रहे हैं, ताल बजा के अपना करखी अर्पण कर रहे हैं, आंखें बंद करके मन इंद्रियां उसमें लगा रहे हैं, कितनी देर देते, लगाओ चलो। जहां श्रद्धा होती है वहां मन लगता है, जहां प्रीति होती है वहां मति लगती, जहां प्रीति की पराकाष्ठा होती है वहां स्वयं लगता है, जहाँ स्वयं लगता है तो वो भी अपने आप को स्वयं को दे डालता है। भजताम प्रीति पूर्वकम। कीड़ी अपनी चाल से चले लेकिन गरुड़ चलेगा तो मुलाकात हो जाएगी। कंगाल अपनी हसियत के अनुसार स्वागत करता है या कुछ देता है तो सम्राट अपनी शक्ति के अनुसार। ऐसे अंतःकरण अवच्छिन्न जीव बेचारा अपने तरफ से प्रीति पूर्वक अपने मन को इंद्रियों को मान्यताओं को उस परमात्मा में डूबा दे, शांति में गोता मारे तो वो विश्रांति अपने तरफ से जो देता है। असंगो अयम पुरुष संगति। उस असंगो अयम पुरुष केवला निर्गुणश्च। गुण प्रकृति में माया में वो निर्गुण रोटी सबसे मोटी उसका भोग लगाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है, कबीर जी ने कहा। अंजन माना इंद्रियां, जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है वो कोई आकृति की कल्पना मत करना, शांत होते जाना। द्विभुज चतुर्भुज साकार की कल्पना मत करना, अपने आप को उसमें दे देना, जिससे साकार भी जीव है और निराकार ईश्वर की भी, साकार जीव और साकार ईश्वर की भी सत्ता जिससे सिद्ध होती है। उस सच्चिदानंद में अपने आप को थोड़ा डुबाते जाना। कुंभ बांधा चल रहे जल बिनु कुंभ न होए। मटके से बंधा हुआ पानी मटके में रहता है लेकिन पानी के बिना तो मिट्टी से मटका भी तो नहीं बन सकता है। कुंभे बांधा जल रहे जल बिनु कुंभ न होए। ज्ञाने बांधा मन रहे मन बिनु ज्ञान न होए। मन से ही तो ज्ञान होगा, मन उस परमेश्वर में डूबाओ, ज्ञान से ही मन की सिद्धि होती है और मन बिना ज्ञान का पता नहीं चलता। मन में ज्ञान के संस्कार पड़ने दो, मन को ज्ञान स्वरूप में पुरुष में विश्रांति पाने दो। बिना अनुभव के वो हाल हो जाते कब कहानियां और कथाओं करने वालों विचारों के, मनवा तू क्यों बावरा तेरी सुध क्यों खोए, मौत आए सिर पर खड़ी उल्टे बैर न होए। बात बनाई जग ठग्यो मेरा साया। भगवान ने ये कहा, भागवत में ये कहा, फलानी जगह ये कहा, रामायण में ये कहा, लेकिन तेरा मन रामायण में रमन कर ले, भगवान में रमन कर ले यार, वैसा भी कर भैया। बात बनाई जग ठग्यो मन मोघा नाही। बात बनाई जग ठग्यो, बात बनाई जग ठग्यो मन पर मोघा नाही। कहे कबीर मन ले गया लख चौरासी माही। बात बनाई जग ठग्यो मन पर मोघा नाही। कह कबीर मन ले गया लख चौरासी माई। मनवा तू क्यों बावरा तेरी सुधी क्यों खोए, मौत आए सिर पर खड़ी उल्टे बैर न होए। अपनी योग्यता का, अपनी मन मति का, अपने बल का सदुपयोग करें। विवेक का आदर करने से दोषों का अभाव हो जाता है। आखिर ये भोग कर कब तक, ये करके कब तक? अब छोड़, विश्रांति पाले। बात करते करते थक जाते तो विश्रांति, चलते चलते थक जाते तो विश्रांति, करते तो फिर चलने की शक्ति आती, जगते जगते थक जाते तो सोते तो फिर शक्ति आती। ऐसे ही अपने आत्मा में विश्रांति पाले मनवा, विवेक का आदर कर, दोष निवृत्त हो जाएंगे, आवश्यक सामर्थ्य मिल जाएगा। जैसे विश्रांति से आवश्यक सामर्थ्य शरीर को मन को मिलता है, ऐसे तू अंतर आत्मा राम में विश्रांति कर तो तुझे आवश्यक सामर्थ्य मिल जाएगा, मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। इतना वो सरल है। घर विच आनंद रहा भरपूर, मन मुख स्वाद न पाया। मन को जैसा अच्छा लगे ऐसा तो पतंगिया भी कर रहा है, कुत्ता भी कर रहा है, मछली भी कर रही है, घोड़ा गधा भी कर रहा है। जो वास्तव में अच्छा है उसमें तेरे मन को डुबा दे। मन सब पर सवार है, बैठा करे अनंत, मन ही पर सवार है कोई बिरला संत। मन सब पे माहों पे सवार है, नचा रहा है। कोई मन पे सवार हो जाए और मन पे सवार होने का सामर्थ्य नहीं है तो मन उसमें डुबा दे। ले भाई मन तू ले ले, मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तेरा मन है तुझे देता हूँ, हे प्रभु हे नाथ ले ले। ऐसा प्रीति पूर्वक करते हुए जो भजन करते, ऐसे दीवानों के मन को भगवान ले लेते हैं। फिर उनका मन कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गुनगुनाता है, कभी कुछ। मन मन का उनकी माला है, तन उनका एक शिवाला है। संगत जब देखो भोला भाला है। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है। कभी हंसी आएगी, कभी रुदन आएगी, लेकिन दिल किसी परिस्थिति में फंसेगा नहीं कि मैं रोयाई करूं, मैं हंसाई करूं। नहीं, मैं ये भोगू ना। सच्चे साधक का मन कहीं फंसता नहीं, रुकता नहीं उस प्यारे के सिवाय। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। जब मन विश्रांति पाता है तो दिव्य परमाणु पैदा होते हैं। उसकी आंखों से दिव्य परमाणु, उसके शरीर से दिव्य परमाणु निकलते, उसके वाणी से दिव्य भाव उत्पन्न होते। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। जब देखो भोला भाला है। जंगल में जोगी बसता है, कह रोता है, कह हंसता है। दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। बड़ी शांति मिलती, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसने मन दे दिया। धीरे धीरे बुद्धि भी आई तो बुद्धि योग देने वाला तो बैठा, विश्रांति मिल जाती। जो जो विश्रांति बढ़ती जाती त्यों त्यों आवश्यक योग्यता और सामर्थ्य उभरता है, और जो जो मैं है वो बेदरा हो जाता है। अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा रखने से विश्रांति, प्रीति रखने से विश्रांति। अपने आत्मदेव के प्रति, गुरु कहो, इष्ट देव कहो, आत्मा कहो, सब एक ही तत्व के रूप है। प्रभु तेरी जय हो, उसे प्यार करना, ध्यान मत करना, तप मत करना, कर्ता बना रहेगा। तुम तो प्रेम करते उसमें पिघलते जाने दो, मन बुद्धि को अर्पण कर दो। ले ये मन तेरा, ये बुद्धि तेरी, मैं भी तेरा हूँ वास्तव में। तो लेकिन मां दाता के फलाने का पापा हूं, फलाने का फलाने की पत्नी हूं, फलाने का पति, ये सब मिथ्या है। मैं तेरा तू मेरा, सच्ची बात है, अल्लाह कसम। शरीर मिथ्या तो पति होना भी मिथ्या, पत्नी होना भी मिथ्या, दुखी होना भी मिथ्या, सुखी होना भी मिथ्या। आत्मा सत्य और परमात्मा सत्य, मैं तेरा हूं और तू मेरा, ये बिल्कुल सत्य है। अगले जन्म का बाप नहीं था फिर भी तू मेरा ही था। अगले जन्म वाला शरीर नहीं है, अगले जन्म वाला बाप नहीं, अगले जन्म वाली माँ नहीं, लेकिन अगले जन्म में भी चैतन्य आत्मा तू तो मेरा था, अभी भी है। बचपन के मित्र नहीं है, बचपन के सुख दुख नहीं है, लेकिन बचपन में जो तू मेरे दिल में धड़कने चला था, अभी भी तू वही है। हम जान गए तुझे, तू वही का वही है। जवानी उभरी, जवानी के दोस्त मिले, कुछ दुश्मन हो गए, कुछ मित्र हो गए, कुछ भूल गए, कुछ भाग गए, लेकिन तू वही का वही। बुढ़ापा आया, कई जवान चले गए, कई बूढ़े आए मिले चले गए, लेकिन तू वही का वही। अब मौत भी आएगी, बीमारियां भी आएगी जाएगी, मौत भी आएगी और चली जाएगी, लेकिन ये जीव आत्मा का चैतन्य परमात्मा तू वही का वही। तेरे को कहीं देखा है? मन इंद्रियां लीन होती है, विश्रांति भरता है, सुबह ताजा बनाता है, और जब ध्यान करते तो हम स्वयं तेरे सुख से सुखमय ज्ञानमय हो जाते। हम तुझे थोड़ा थोड़ा जानी था, लेकिन वो तेरी कृपा है बाबा। हम जानने वाले तेरे से अलग रहते तो अनजान होते, तेरे में डूबते हैं तो जानकारियां मिलती। विज्ञानी भी खोजते खोजते मैं और मेरे को भूलता है, उसमें डूबता है, तब जानकारियां लाता है अपनी मन बुद्धि में। साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जैसे मेहंदी बीच में लाली रही छुपा है। वाह, विश्रांति, मधुर शांति। काम बिगाड़े भक्ति को, काम विकार और कामनाएं भक्ति को बिगाड़ते, भक्ति के रस को बिगाड़ते, ज्ञान बिगाड़े क्रोध, क्रोध आने से ज्ञान की निष्ठा गड़बड़ हो जाती, लोभ वैराग्य बिगाड़ दे, लोभ बढ़ता है तो वैराग्य ढीला हो जाता है, मोह बिगाड़े बोध, जे विषया संतन तजे, जे विषया संतन तजे मूड ताही लिपटात। जिन विषय विकारों को संत तुच्छ समझकर, फंसाने वाले समझकर छोड़ देते संत लोग, भोग को, विषय विकारों को, जे विषया संतन तजे मूड ताही लिपटात। जो नरदारे वमन कर स्वान स्वाद संखात, जैसे मनुष्य वमन कर देता लेकिन कुत्ता पूंछ लाते हुए चाटता है, ऐसे जो विवेकी हैं, जन्मों का अंत करने के तरफ चल पड़े हैं, ऐसे संत इन विषय विकारों को चवाना चबीना को छोड़े हैं, मूड वही खाया करें। जैसे विवेक की उल्टी करता कुत्ता पूंछ हिला के खा गए, ऐसे ही आहा।
समुद्र मंथन और रत्न निकले, उन बाह्य रत्नों के पीछे जो लगे वो अमृत कुंभ से वंचित रह गए, लेकिन अमृत कुंभ निकला, देव असुर मिलकर अमरता सब चाहते, आपकी आसुरी वृत्ति भी अमर सुख सदा सुख चाहती है, और देवी वृत्ति भी सुख चाहती है। अमृत का घड़ा निकला, उसकी सुरक्षा के लिए बृहस्पति और अमृत कुंभ को ले जाने वाले जयंत की कथा पौराणिक है और ये पौराणिक कथा शास्त्रीय कथा के पीछे एक तात्विक अमृत की खबर है। दो वस्तु के मेल से तीसरी चीज का प्रागट्य होता है, दो व्यक्तियों के विचार से तीसरा एक नया विचार नई दृष्टि मिलती है, दो रंगों के मेल से तीसरा रंग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही ग्रह नक्षत्र और स्थान की विशेष व्यवस्था के मेल से चित्त में प्रसन्नता और छुपे हुए आत्म अमृत का प्रागट्य होता है, यही महाकुंभ का उद्देश्य है। जय राम जी की। हर तीन वर्ष में ग्रह नक्षत्रों की वह दशा होती है उन तीर्थों में, प्रयाग, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार। तो ऐसा नहीं कि वो कुंभ लेकर निकले और जहां जहां कुंभ के अमृत के छींटे पड़े वो अमृत अभी बना हुआ है और अब हम आकर गंगा नहाएंगे अथवा कहां इलाहाबाद में नहाएंगे तो वो पुराना अमृत हमें मिलेगा। नहीं, वह ग्रह नक्षत्र तिथि के मेल से आपके चित्त में सात्विक दशा उत्पन्न होती है और उन तीर्थों में नहाने से आपके अमर आत्मा की झलकें आती है। ये कुंभ मेला की व्यवस्था है। दुनिया में इतना बड़ा मेला और कहीं नहीं लगता है कुंभ की बराबरी कर सके। और इसमें तमाम मत के, तमाम पंथों के, तमाम मान्यताओं वाले, तमाम नात जात वाले लोग एक ही उस अमर धारा की मधुरता में प्रसन्न होते हैं। ये शांति और प्रसन्नता का एहसास न हो अगर किसी का कल्पित किया हुआ होता तो कल्पित चीज का सुख ज्यादा देर नहीं ठहरता है। इसके पीछे शाश्वत सत्य के संकेत हैं और अमरता के उस आंदोलन का लाभ होता है। इसलिए महीनों भर कोई मेला चला रहे, दो दो महीना मेला चलता रहे और इतने हजारों नहीं लाखों लाखों की तादाद में लोग, और ऐरे गैरे नहीं मेले की भीड़ के धक्का धक्की का आनंद लेने वाले लोग कहीं होते तो एक आध दिन का मेला होता है, लेकिन यहां तो बुद्धिमान लोग हजारों लाखों की संख्या में, समझदार लोग हजारों हजारों की संख्या में, साधु संत महंत मंडलेश्वर आदि एकत्रित होते हैं और हम महीनों महीनों इस धरती पर रहते हैं तो जरूर कुछ रहस्य है जो ऐसे घोर कूड़ कपट है, दंगा मुकदमे भरे आदि के गंदे वातावरण में जीने वाला मानव सहलाओ भी इस अमरता की कुछ बूंदे पाकर शांति, आनंद और माधुर्य का एहसास करता है। धन्य है भारत संस्कृति और धन्य है देव और आसुरी वृत्तियों को मंद्राचल और वासुकी का सहयोग लेकर मंथन करते करते अपने चित्रूपी सागर से चैतन्य का अमृत खोजने की व्यवस्था। हम लोग सचमुच बड़ भागी हैं जो हमें अपने मूल अमृत स्वभाव आत्मा की ओर ले जाने वाला वातावरण और सत्संग भी मिलता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, अन्यानि संयाति नवानि देही। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही ये देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। वास्तव में ये देह और देह का स्वामी कहो अथवा देह का अधिष्ठान कहो, ये आत्मा उससे अलग है। जैसे आप कपड़े पुराने छोड़कर नए पहन लेते हैं, ऐसे इस पुरानी देहों को छोड़कर ये जीवात्मा देही नए देहों में जाता है। ये तब तक नए देह बदलता रहता है जब तक इसे पूर्ण अमरता का अनुभव नहीं होता है। मर शरीर में अमर की प्यास किसी ने जगाई नहीं, स्वतः सिद्ध है। कोई ये नहीं सिखाता कि आप सुख चाहो, कोई ये नहीं सिखाता है कि आप सुख के लिए कोशिश करो। कीड़ी से लेकर कुंजर तक, मनुष्य से लेकर देवता तक, सारे प्राणी सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। जो सत है वही चित्त है, वही आनंद स्वरूप है। तो तुम्हारा वो देह तो सत नहीं है, लेकिन देह के भीतर बैठा देह ही सत है। देह तो चेतन नहीं है, लेकिन देह के भीतर बैठा हुआ देह ही चैतन्य है। देह तो आनंद रूप नहीं है, लेकिन देह ही आनंद रूप है। गलती से देही को मैं रूप में नहीं जानते और देह को मैं रूप में मानते। नानक जी ने कहा, भूला जब भी आपनू तभी होया खराब। अपने आत्म भाव को, अपने आत्म सुख को ये जीव जब भूला है तभी खराब हुआ। कई यात्राएं करता करता, यातनाएं सहता सहता, धन कमा लूं सुखी हो जाऊं, इतना पढ़ लूं सुखी हो जाऊं, इतना छोड़ दूं तो सुखी हो जाऊं, इतना पालूं तो सुखी हो जाऊं, करते करते अंत में शरीर जीर्ण हो जाता है, बोलता है इससे तो मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। सुख की मांग अनादिकाल से, वो सुख जो नित्य हो, शाश्वत हो। क्षणिक सुख मिलता है, थोड़ा सुखी होता है, फिर बेचारा दुखी हो जाता है। सुख, शाश्वत सुख पाने की इस जीव की जो दौड़ है, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक चीजें बदलेगा, फैशन बदलेगा, मित्र बदलेगा, मकान बदलेगा, घर बदलेगा, यहां तक कि तन भी बदलेगा। तो इस शरीर को मैं मानने की, उस ईश्वर को खोजने में सुंदर तरीका है कि इस देह को मैं मानने की भूल निकालना शुरू कर दे। जैसे मैं हाथ नहीं हूं, हाथ मेरा है। जो मेरा है वो मैं नहीं, और जो मैं हूं उसका मैं त्याग नहीं कर सकता। मेरा सदा टिक नहीं सकता और मैं अपने आप को छोड़ नहीं सकता। ये तकिया मेरा है, ये सदा नहीं टिकेगा। ये हाथ मेरा है, सदा नहीं रहेगा। ये पैर मेरे हैं, शरीर मेरा है। तो शरीर बचपन अवस्था बदल गई, किशोर अवस्था बदल गई, जौवन अवस्था बदल गई, मृत्यु की घड़ियां आएगी वो अवस्था बदल जाएगी। ये मेरा शरीर मेरे साथ नहीं चलेगा, लेकिन मैं तो शरीर के मरने के बाद भी रहूंगा। वो मैं कौन हूं उसको जान लूं तो निहाल हो जाऊं, कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। रमण महर्षि के पास कोई जाता कि भाई तुम ईश्वर को चाहने वाले तुम कौन हो, उसको खोजो। तपस्व सर्वेशु एकाग्रता परम तपोस, एक पर ब्रह्म परमात्मा में, एक ही अग्र में हो, ऐसे परमात्मा तत्व के विचार करके स्थित रहने वाला वो दीर्घ तपा तपस्वी अपने तप में सफल हो गए। सुख दुख में उनका चित्त सम रहता था। दीर्घ तपा तप के सफलता को छुए थे, उनकी पत्नी भी सफल हो गई थी। समय पाकर दीर्घ तपा ने देखा कि ये पुराने वस्त्र अब छूटने वाले हैं, इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि बुद्धिदाता में स्थित करके शरीर को छोड़ दिया। समय पाकर पत्नी ने भी पति के लोक का अनुगमन किया। तब दीर्घ तपा का बड़ा पुत्र तो ज्ञानवान था, उन्होंने अंतिम क्रियाएं अंत्येष्टि की, लेकिन जो छोटा बेटा था, पावक और पुण्यक दो पुत्र थे, तो पावक छोटा ज्ञातज्ञ नहीं था और पुण्यक जानता था। पुण्यक ने कहा कि भैया तू किसके लिए रोता है, अगर रोना है तो ज्ञान से सोच, तो जिनके लिए रोता है वे तेरे यही माता पिता नहीं है, तमाम जन्मों में तमाम तेरे माता पिता और बंधु हुए हैं, तमाम तूने शरीर धारण किए हैं। एक बार तू बंगदेश में मृग हुआ था, मृगिणी तेरी माँ थी और मृग तेरा बाप था। जम्बूद्वीप में एक बार महेंद्र पर्वत के निकट ही तूने पशु का शरीर धारण किया था। एक बार तू हंस हुआ था और हंस का शरीर छोड़ने के बाद तू वृक्ष की योनि में आया था, और वृक्ष की योनि में था, जंगल में था, सिंह आते जाते तुझे दिखते अपने, उस चिंतना से तू फिर सिंह हुआ। दशारण्य देश में तू वानर हुआ और कई कई देश में तू हाथी हुआ। तुषारण्य देश में तू राजा का पुत्र बना और शैलव देश में तू एक बार गधा बना था। बंग देश में तू तीतर के शरीर में जिया था, तीतरी तेरी माँ थी, दूसरे तीतर तेरे भाई मित्र थे, तीतर तेरा बाप था। अगर शरीर को तू मैं मानता है तो तेरे कई बाप हो गए, कई मैं हो गई और कई मित्र हो गए, कई शत्रु हो गए, लेकिन जहां से मैं उठता है उस आत्मा को मैं मानता है तो वो परमात्मा अनादिकाल से वो तेरा था, है और रहेगा, उसी का तू चिंतन करके मुक्त हो जा। देह की ममता कब तक करेगा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, श्री कृष्ण कहते। जैसे पुराने कपड़े उतार के नए पहने जाते हैं, ऐसे ये जीव पुराने शरीर छोड़कर नए धारण करता रहता है, और ये तब तक यातनाएं सहता रहता है, माता के गर्भों में लटकता रहता है, पिता के शरीर से पटका जाता है, जब तक वो असली अपने आत्मदेव को, अपने शुद्ध मैं स्वरूप को नहीं जानता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, भक्ति भावों को रसमय करेगी, भगवतमय करेगी, और ज्ञान भगवान के स्वरूप की खबर देगा, और वैराग्य परपंच के दुखों से उपराम कर देगा, तो मुक्तात्मा हो जाएगा। जैसे हमारे पिता दीर्घ तपा और माता अपने मुक्त शुद्ध बुद्ध स्वरूप को पाकर शरीर को एक पुराना वस्त्र समझ के छोड़ दी, ऐसे ही तुम इस शरीर में रहते हुए शरीर का अभिमान छोड़ दोगे, कर्म करते हुए कर्म में कर्तापन की बुद्धि बदल जाएगी, अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्व आत्मने मन्यते यदाह, अष्टावक्र संहिता ने कहा। अष्टावक्र मुनि जनक को कहते हैं कि जब ये जीव अपने अकर्ता और अभोक्ता स्वभाव को मानने लगता है तो उसके सारे कर्म बंधन और सारी वासनाएं क्षीण हो जाती। अनुभवी संत कहते हैं कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। एक तो ये स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों में जो व्याप्त चैतन्य है जिससे मैं उत्पन्न होती है, उस मैं के मूल को नानक जी कहते हैं भूलिया जब भी आपनु तभी हुआ खराब। अपने शुद्ध उस अकाल पुरुष के चेतन स्वभाव को भूला और हार्ड मास के शरीर को मैं माना और शरीर के संबंधी वस्तु व्यक्तियों को मेरा माना, तभी से ये खराब हुआ। भूलिया जब भी आपनु तभी हुआ खराब। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो हाजरा हजूर है, जागंदी जोत है, आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। ऐसे सत स्वरूप को न जानने के कारण असत मैं शरीर को मान लेता है, असत शरीर को मैं मान लेता है, बदलने वाले वस्तु और पदार्थों को मेरा मान लेता है। पदार्थ कभी नहीं कहते, हाँ हम ही कहते कि ये गहने मेरे, गहने कभी नहीं कहते कि सेठानी हम तुम्हारे हैं, जय राम जी की। हम ही कहते कि मकान और फैक्ट्री हमारी है, फैक्ट्री और मकान कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे। पिक्चर वाले गाते जब तक रहेंगे चांद सितारे हम है तुम्हारे तुम हो हमारे परदेसी तुम भूल न जाना।
आधा घंटे के बाद तो झगड़ा हो जाता है, थोड़ा दूसरी फिल्म में एक दूसरे के शत्रु का रोल अदा करते हैं।
अब उनके गाने सुनकर आज का नया जनरेशन बोले जब तक रहेंगे चांद सितारे हम है तुम्हारे तुम हमारे सरासर ना समझी है।
बाहर के मित्र तुम्हारे हमारे तो नहीं रहते, ये शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देता, चांद सितारे तो क्या भाई कल क्या हो जाए कोई पता नहीं।
जय राम जी की।
लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तो चांद सितारे रहे तब भी तुम्हारा है, और चांद सितारे महापरले में गायब हो जाए तभी भी जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है उस सच्चिदानंद को जान लो।
भागवत में पहला श्लोक आता है सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है उसकी सत्यता से जगत की क्रिया, चेतनता से ज्ञान होता है, उसके आनंदता से संसार में कुछ झलक मिलती है सुख की। जरा सी सुख की झलक के लिए कितना कितना करते हैं, अगर ज्ञान हो जाए उसमें प्रीति और ध्यान हो जाए तो सुख ही सुख है, माधुर्य ही माधुर्य है। जिसको कहीं अपना मित्र मिलता है तो उसको कितना मजा आता है, कभी कभी कहीं कहीं अपना स्नेही मिल जाता है तो आनंद आता है, कि जिसको ज्ञान हो जाता है उसको अपना स्नेही जहां तहां भासता है तो उसके आनंद का क्या कहना।
वो पुरुष तो ऐसा हो जाता है, रामतीर्थ कहते हैं कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरांदी वाहरे मौज फकीरांदी,
कभी तो ओढ़े शाल दुशाले कभी गुदड़ियां लीरांदी वाहरे मौज फकीरांदी।
मंग तंग के टुकड़े खांदे, इन बाबाओं से पूछो क्या रोज एक जैसा मिलता है क्या भंडारा, अथवा रोज एक जैसी कड़ी दाल चावल मिलते क्या, कभी कहीं हड़दूत भी हो जाते कभी कुछ भी हो जाता है।
लेकिन चलो भाई दे उसका भला ना दे उसका भला, जय जय सिया राम, कभी फूंक मार भी देते बाबा लोग भैसा का समान।
एक बार समर्थ रामदास मधुकरी करते करते ऐसी जगह पर पहुंचे जो माई बड़ी झगड़ाखोर थी, ऐसी चंडी रूपा थी कि अड़ोस पड़ोस में नाक में दम कर दिया था। पति तो तोबा पुकार गया लेकिन पड़ोसियों ने भी देखा कि हम कोई पूर्व जन्म का पाप का फल भोग रहे कि ऐसी पड़ोसन मिली। उस जमाने में कोटा स्टोन अथवा सीमेंट कंक्रीट के फर्श वाले घर नहीं होते थे, लीपण करते थे गाय के गोबर मिट्टी, और लीपण के लिए कपड़ा रखते थे कि हाथ में लग न जाए। तो दो तीन दिन पहले का गोबर और मिट्टी का घोल बना कर रखा और लीप रही थी और किसी से झगड़ भी रही थी। इतने में शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास आ गए, जय जय रघुवीर समर्थ नारायण हरि भिक्षाम देहे। उसने उठाया माई ने जिससे लीप पोत रही थी, अभी रोटी बनाकर यूं बैठी हूं, आ गए जय जय रघुवीर समर्थ भिक्षाम दे, तेरे बाप का है तेरा ऐसा है साधु के बच्चे काम धंधा करने से डरते मुफत का खाते फिरते दखड़ा दखड़ा। वो जो मिट्टी और गोबर की गंदगी के घोल से गंद कपड़ा था दे मारा समर्थ के मुंह पे।
अब दुख का प्रसंग तो है भैया जय राम जी की, लेकिन दुखी होना न होना वो आपके हाथ की बात है। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। समर्थ ने वो मुंह पे लगा हुआ गोबर और मिट्टी के घोल वाला कपड़े का टुकड़ा लिया, जय जय सिया राम, कुछ तो दिया कुछ तो दिया। गए सरिता पर हाथ पैर धोए, उस कपड़े को धोया, दूसरे घर से भिक्षा ली, भोजन भोजन किया, शाम हुई दिया जलाना था, देखा कि उस माइक बड़ी अशांत है बेचारी, खाली तो नहीं भेजा कुछ तो दिया। वो कपड़ा जो धोके सुखाया था उस कपड़े में से थोड़ी लीरी निकाल के बाती बनाई, बाती अर्दिये में घी डालकर वो बाती चलाई। रोज उस कपड़े से थोड़ा टुकड़ा फाड़ के बाती बनाते और उसकी बाती भजन में काम लाते। अब जय राम जी बोलना पड़ेगा, साधु बाबा भी बोलेंगे सब, जय जय सियाराम साहे बंदगी। कबीर पंथी होते हैं उनको साहे बोलने में आनंद आता है, और नाथ संप्रदाय के होते हैं उनको अलख बोलने में आनंद आता है। रामानंदी और वल्लभाचार्य उनको जय जय सियाराम बोलने में ज्यादा मजा आता है। जय जय सियाराम दंडवत महाराज। और वृंदावन में तो जिस किसी को देखो तो गुरु गुरु बोलते सबको। गुरु कहाँ जा रहे हैं, बोले बाजार जा रहा हूँ। गुरु जरा मेरा जूता सिलाते आना। गुरु शब्द कितना ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि, उससे भी मेरे गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन वृंदावन में तो तोबा तोबा। नारायण हरि शब्दों के साथ कई बार अन्याय हो जाता है। कबीर जी ने कहा, दास कबीर चढ़ो गढ़ो पर राज मिलो अविनाश। महाराज महान राज मिला, राजा को तो विषय बेकार वस्तुएं संभाल कर टैक्स लेकर फोर्स रख कर खजाने संभाल कर फिर कई वस्तुओं का उपभोग करके मजा लेना पड़ता है। मेरा इतना बड़ा राज है, मेरा इतना बड़ा कोष है, अहंकार का सुख मिलता है। लेकिन महाराज को तो अहंकार रहित होते हुए और इतनी मजूरी करे बिना महाराजों को सुख मिलता है, इसलिए राजा से भी बड़ा पद महाराज का माना जाता है। अब महाराज जिसको अविनाशी राज मिला है, ऊंचे आ गए विषय विकारों से, उनको बोला जाता है महाराज। लेकिन आजकल तो रसोई बनाने वाले को भी महाराज बोलते, भीख मांगने वाले को भी महाराज बोलते। जिससे जान छुड़ानी हो, अरे ले भाई 10 पैसे जा महाराज जा। शब्दों के साथ कई बार अन्याय होता है। समर्थ रामदास ने बाती जलाते जलाते वो टुकड़ा पूरा कर दिया होगा, अब वहीं चलते अपन जय राम जी के। जब वो टुकड़ा माई का लीरा पूरा हो गया तो समर्थ उसी माई के द्वार पर आए, जय जय रघुवीर समर्थ। उस समर्थ के दर्शन करते ही माई का हृदय बदल गया कि महाराज कुछ दिन पहले तुम आए थे और मैंने मिट्टी और गोबर से सनी और कपड़े की लीरी मुंह पर दे मारी और आप कुछ भी नहीं बोले। महाराज मैं तो झगड़ाखोर माई, महाराज आप मेरे को माफ कर दीजिए। बोले बहन कुछ न देने की बजाय वो लीरी दी और मैं रोज दिया जलाता था। तेरे लीरी से मेरे जीवन में प्रकाश हुआ तो मेरा राम जी तेरे जीवन में भी प्रकाश कर दे। माई फुट फुट के चरणों पर बदल गई। महापुरुष के बोलने के पीछे उनका संकल्प, उनका त्याग, उनका तप बड़ी मदद करता। कोई सत्पुरुष पूछ ले क्यों भाई ध्यान भजन करते हो, तो उसका मतलब नहीं करते तो करो और कर रहे हैं तो बढ़ाओ, क्योंकि उन्होंने पूछा है तो उनका शुभ संकल्प आपको मिल रहा है। जय राम जी की। उनका त्याग तप और शुभ संकल्प बड़ी मदद करता है। ऐसे आत्मरामी संतों की आंखों से आध्यात्मिक प्रमाणों निकलते, उनकी वाणी से परमात्मा तत्व को छूकर जो वचन निकलते वो भी चित्त को शांति देते, उनको छूकर जो हवाएं जाती अथवा उनके शरीर के रोमकूप से जो वेव्स निकलते। अभी तो कैमरा भी डेवलप हुए कि फोटो लेते तो हर एक इंसान की आभा उसके इर्द गिर्द कलरों के रूप में कैमरा पकड़ता, लेकिन वो आध्यात्मिक आभा अति सूक्ष्म आभा तो कैमरा भी नहीं पकड़ सकता, ऐसी महापुरुषों की होती। आभा मंडल के ज्ञाता लोग बोलते हैं कि हर मनुष्य के इर्द गिर्द अपने वाइब्रेशन होते, साधारण आदमी के इर्द गिर्द उसके वेव्स 1 फुट की गोलाई में होते, 1 फुट के व्यास त्रिज्या में होते। जो आदमी काम में या क्रोध के भाव में आ जाते हैं उसकी 7 फुट की त्रिज्या बन जाती है गोलाई में, उसके वही वाइब्रेशन होगा। लेकिन जो आत्मरामी संत है
उनकी 50 गज की त्रिज्या में चहु और मतलब 150 फीट चारों तरफ व्यास बन जाता गोलाई बन। उस रेंज में जो लोग जाते हैं उनके चित्त में सात्विक विचार और उन्हीं के शुभ भाव आंदोलन उनको मिलते हैं। तो वही जब से ये कुंभ का मेला आरंभ हुआ तब से लेकर इन तीर्थों में कितने महापुरुष आए होंगे, कितने भक्त आए होंगे, कितने जति जोगी आए होंगे। बहुत सारे संत उच्च कोटि के होते हैं, बहुत सारे संत साधक कोटि के होते हैं, बहुत सारे संत कर्मकांड कोटि के होते हैं। वो संत और भक्तों में भी कई छुपे लाल होते हैं, गृहस्थ में भी कई छुपे हुए महापुरुष होते हैं। तो उस धरती पर जहां जो काम किया जाता है वहां उसी प्रकार के आंदोलन वाइब्रेशन बहुत समय तक रहते हैं। जैसे सिनेमा थिएटर में चले जाओ तो गाना गाने की इच्छा होगी, किसी अनजान को ले जाओ गाना गाना नहीं जानता फिर भी वो थिएटर के वाइब्रेशन में आएगा तो कॉलर ठीक करेगा, अपना बाल सजाएगा, ये चालू कर देगा। और किसी सत्संग मंडप में निपट निराले को ले जाए तो फिर हाथ जुड़ जाएंगे, सिर झुक जाएगा, अहम थोड़ा गलित होने लगेगा, राम राम हरि ओम जय श्री राम नमस्ते, ये शुभ भाव आने ही लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग थे भारत में जो अपना चौका हर रोज गाय के गोबर से लीप कर अपने रसोड़े में रसोई बनाते थे। ऐसे चुस्त काशी के ब्राह्मण अथवा काशी के भक्त जब अमेरिका गए आए तो धीरे धीरे देखा कि सब खा रहे पी रहे, तो अब नहीं खाते तो बुद्धू ठहरते, तो फिर दंभ करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी गंदी चीज खाना ये भी एक प्रकार का दंभ है, पाखंड है, जयराम जी की, उचित नहीं है, लेकिन लोग हमें बुद्धू मानेंगे इसलिए खा लो कर लो, ये भी दंभ में गिना गया। चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा ये कोक पी लेते, थोड़ा सा फलाना कर लेते, ऐसे करते 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 अब टेबलों पे खाते गौ का मांस छोड़कर बाकी का अंडा फंडा भी खाते। और कुछ तो ऐसे भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान में तो गौ का मांस नहीं खाना चाहिए, क्यों कि वो तो कृष्ण की गाय हो, यहाँ तो सिंग बिना वाली गाय है, जर्सी गाय है, इसके लिए तो चल जाता होगा बाबा, उसका मतलब कभी कभी वो खा जाते होंगे, जय राम जी की। तो ऐसे लोग जो बहुत पवित्रता से रहते लेकिन संग के कारण धीरे 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 बेचारे ऐसे, जब भोगियों का और हल्का संग मिलता है तो अच्छा आदमी भी छोटे कर्मों में लग जाता है, तो योगियों का और भक्तों का संग मिले तो छोटे मन बुद्धि भी ऊंचे विचार और ऊंचे में ऊंचे परमात्मा के तरफ लग जाते हैं। रामायण ने ठीक कहा है, प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, भक्ति का पहला सोपान है सत्संग, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमार।